ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संसद में विचाराधीन विधेयक को यथाशीघ्र अंतिम रूप देने का सत्तारूढ़ दल का निर्णय। अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर मजबूत संरचना निर्माण पर ध्यान देने की बात पर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दिया जोर। बांके के नरेनापुर में आग लगने से 17 घर जलकर हुए नष्ट। काठमांडू महानगर पालिका द्वारा प्रजनन आयु की महिलाओं के स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का निःशुल्क प्रारंभिक उपचार अभियान शुरू। और गाजा क्षेत्र में इजराइल के हमले में एक हफ्ते में 270 से अधिक बच्चों की मौत। अब समाचार विस्तार से। सत्तारूढ़ दलों ने संसद में विचाराधीन विधेयकों को शीघ्र पारित करने का निर्णय किया है। प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में आज हुई सत्तारूढ़ दल के शीर्ष नेताओं की बैठक में संसद में लंबित विधेयकों जल्द से जल्द आगे बढ़ाने के मुद्दे पर चर्चा हुई। बैठक में शामिल श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री शरद सिंह भंडारी ने राजसभा को ये जानकारी दी। मंत्री भंडारी ने बताया कि बैठक में भूमि संबंधी अध्यादेश पर राजनीतिक सहमति बनाने सहित अन्य समसामयिक मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करके मजबूत और टिकाऊ संरचनाओं के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। प्रगतिशील इंजीनियर्स एसोसिएशन नेपाल पीन के 10वें महाधिवेशन में उन्होंने इंजीनियरों से देश में मजबूत निर्माण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ओली ने यह भी कहा कि देश में विपक्ष की भूमिका रचनात्मक और सकारात्मक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नेपाल में उन्नत और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने वाली शिक्षा प्रणाली को खुलेपन के साथ विकसित किया जाना चाहिए ताकि युवाओं के लिए नए अवसर सृजित हो सके। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि भले ही सभी के विचार अलग अलग हो लेकिन देश के निर्माण का साझा कर्तव्य एक ही होना चाहिए। उन्होंने किसी एक व्यक्ति को संस्था मानकर चलने की प्रवृत्ति को सामंती सोच बताया। नेपाली कांग्रेस के पूर्व सभापति एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला की 15वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कांग्रेस नेत्री सुजाता कोइराला द्वारा लिखित आत्मकथा मैं और मेरे छोटे पिता के लोकार्पण समारोह में प्रधानमंत्री ओली ने ये बात कही। उन्होंने देश और जनहित में सभी को ईमानदारी के साथ काम करने पर जोर दिया। सरकार ने साफ किया है कि सुशासन कायम करने के उद्देश्य से नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक कुलमान घिसिंग को पद से हटाया गया है। मंत्रिपरिषद की कल की बैठक के निर्णयों को साझा करने के लिए आज सिंह दरबार में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने ये बात कही। संचारकर्मी की एक जिज्ञासा पर मंत्री गुरुंग ने कहा कि सरकार फैसले राजनीतिक फायदा या नुकसान को देखकर नहीं बल्कि आवश्यकता और औचित्य के आधार पर लेती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निर्णय के विरुद्ध हो रहे विरोध प्रदर्शन को भी सरकार ने स्वाभाविक रूप में लिया है। बता दें कि मंत्रिपरिषद की कल की बैठक ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण के कार्यकारी निदेशक घिसिंग को पद से बर्खास्त करने और उस पद पर हितेंद्र देव शाक्य को नियुक्त करने का निर्णय किया। इसके अलावा भी मंत्रिपरिषद ने कई निर्णय किए जिनमें चैत 19 गति से 23 गति तक थाईलैंड में होने जा रहे विम्सटेक 6वें शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में सहभागी होने वाले प्रतिनिधिमंडल के दौरे को स्वीकृत करना लगायत शामिल है। कैलाली के गेटा में स्थापित होने वाले शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विश्वविद्यालय में चिकित्सा शिक्षा अध्ययन में सर्वोत्कृष्ट होने वाले को उसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापन कराने की बात पर प्रतिनिधि सभा के सांसदों ने जोर दिया है। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति की बैठक में धारागत विमर्श में सांसदों ने ये बात कही। बैठक में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री विद्या भट्टराय ने कहा कि विश्वविद्यालय स्वयं भी नियमावली बनाकर विधेयक को क्रियान्वयन में ले जा सकता है। प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत ने कहा कि न्याय प्रणाली के सुधार के लिए प्रविधि का प्रयोग जरूरी है। न्याय प्रणाली को अधिक सहज और सरल बनाने के लिए आज ऑनलाइन प्रणाली का शुभारंभ करते हुए प्रधान न्यायाधीश राउत ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि न्याय प्रणाली से अनियमितता विकृति और विसंगति हटाने के लिए डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट से सभी 7 प्रदेशों के मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालय को दी जाने वाली पेशी की सूचना भेजने और जिला अदालतों द्वारा विशेष प्रकृति की याचिकाओं पर कार्रवाई के लिए प्रयोग की जाने वाली ऑनलाइन प्रणाली का आज शुभारंभ किया गया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिका ने प्रजनन आयु वर्ग 30 से 60 वर्ष की महिलाओं के लिए स्तन कैंसर और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर की निशुल्क जांच व प्रारंभिक उपचार अभियान शुरू किया है। यह अभियान चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल के सहयोग से एक महीने तक चलेगा। गत वर्ष जांच से वंचित रही महिलाओं और पिछली जांच में पॉजिटिव रिपोर्ट आई महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्तन कैंसर की जांच में अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी की सुविधा उपलब्ध होगी। बांकी जिले के नरेनापुर गांवपालिका वार्ड नंबर 4 जयरामपुरवा में आज दोपहर करीब 3 बजे लगी भीषण आग में 17 से अधिक घर जलकर नष्ट हो गए। सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक गजेंद्र चंद ने इसकी पुष्टि की है। आग जुमाए खां के घर से शुरू हुई और तेजी से फैल गई। नेपालगंज उप महानगर पालिका की फायर ब्रिगेड, नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी और स्थानीय निवासियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। विभिन्न एजेंसियों के समन्वय से पीड़ितों के लिए आज रात के लिए टेंट और भोजन की व्यवस्था की जा रही है। जिला आपदा प्रबंधन समिति से अतिरिक्त सहायता की मांग की गई है। अभी तक कोई जान हानि की सूचना नहीं है, लेकिन दर्जनों परिवार बेघर हो गए हैं। आग लगने का सटीक कारण अभी जांच के दायरे में है। मुगू में स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकों ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने में आ रही समस्याओं की शिकायत की है। उनके अनुसार भत्ता लेने के लिए बैंक जाने पर राष्ट्रीय पहचान पत्र की आवश्यकता बताई जाती है, जिसके अभाव में वे भत्ता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने बताया है कि पहचान पत्र बनवाने के लिए उन्हें जिला मुख्यालय गमगढ़ी तक पैदल यात्रा करनी पड़ती है, जिसमें 2 से 3 दिन लग जाते हैं। इस कठिन यात्रा के कारण अधिकांश वरिष्ठ नागरिक भत्ता लेने में असमर्थ हैं। उन्होंने प्रशासन से इस मुद्दे का तुरंत समाधान करने की मांग की है। काठमांडू स्थित कालीमाटी सब्जी बाजार में बिक रही सब्जियों की जांच के दौरान खतरनाक स्तर पर कीटनाशक विषादी पाए गए हैं। सब्जियों के नमूनों की प्रयोगशाला जांच में मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कीटनाशकों की मात्रा अधिक पाई गई है। बताया गया है कि कल विभिन्न स्थानों से आई 14 प्रकार की सब्जियों के नमूनों की जांच की गई थी, जिसमें भक्तपुर से आई ब्रोकोली में सबसे अधिक 88.670% कीटनाशक पाया गया। ये जानकारी कालीमाटी फल सब्जी बाजार समिति ने दी। समिति ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए उपभोक्ताओं से सावधानी बरतने की सलाह दी है, साथ ही प्रशासन से सब्जियों की गुणवत्ता पर सख्त निगरानी रखने की मांग की है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। फिलिस्तीन के गाजा क्षेत्र में इजरायली सैन्य कार्रवाई के बीच भयावह मानवीय संकट गहराता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के अनुसार पिछले एक सप्ताह में 270 से अधिक बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों घायल है। यूनिसेफ के मुताबिक 7 दिनों में 270 से अधिक बच्चे हमलों में मारे गए हैं। गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अक्टूबर 2023 से अब तक 13,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें 40% से ज्यादा बच्चे शामिल है। इसराइल का दावा है कि हमले हमास के आतंकी ठिकानों पर किए जा रहे हैं, लेकिन नागरिकों को भारी नुकसान हो रहा है। यूनिसेफ की कार्यकारी निदेशक कैथरीन रेसेल ने कहा, गाजा बच्चों के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक स्थान बन गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि अस्पतालों में दवाओं और बिजली की कमी से हालात और बिगड़ रहे हैं। मानवाधिकार संगठन ने इसराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदमै विचाराधीन विधेयकको यथाशीघ्र अन्तिम रूप दिनेका सत्तारूढ़ दलका निर्णय अत्याधुनिक तकनीकका उपयोग गर मजबूत संरचना निर्माण पर ध्यान देने की बात पर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ने दिया जोर। बांके के नरेनापुर में आग लगने से 17 घर जलकर हुए नष्ट। काठमाण्डू महानगरपालिका द्वारा प्रजनन आयु की महिलाओं के स्तन और गर्भाशय ग्रेवा के कैंसर का निःशुल्क प्रारंभिक उपचार अभियान शुरू। और गाजा क्षेत्र में इसराइल के हमले में एक हफ्ते में 270 से अधिक बच्चों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।